أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ان شاء اللہ تعالی جیسے اس کا نام ہے سورت کا سورہ حج، تو اسی مطابق ہم حجی کے مسائل اس میں کچھ ڈسکس بھی کریں گے، تو آپ لوگوں کی بہت توجہ چاہیے. کچھ آگے آیات آئیں گی آیت نمبر ان شاء اللہ 25 سے، جن میں پھر حج کے مسئلے مسائل سارے آپ کے سامنے آئیں گے. تو ان میں جب تک آپ پوری توجہ کے ساتھ نہیں نا سنیں گے، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آنے کا، تو اس لیے آپ لوگوں کی زیادہ توجہ چاہیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے رکوع میں ہم نے بات کی تھی اصحاب النار کی، کہ کیسے ان کو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ملے گا. جب وہ نکلنا چاہیں گے اس سے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. اب آ رہی ہے بات اہل جنت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ قرآن پاک میں یہی ہے کہ جہاں جہاں جہنم والوں کی بات آتی ہے وہیں جنتیوں کی بھی بات آتی ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ دیکھیں ڈفرینٹ طریقے سے جنت کی بھی نعمتوں کا تذکرہ نا، یہاں پہ خاص طور پہ ان کے جو پہننا ہے، ان کے جو زیورات ہیں، لباس ہیں، ان کی بات خاص طور پہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہے اور ان کی بات چیت کی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا کہاں؟ جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. وہاں پہ کیسے رکھے جائیں گے وہ؟ یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کیا؟ اساویرا، کنگن. کیسے کنگن؟ من ذہبن، سونے میں سے، ولؤلؤاً، اور موتی سے. ایسے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے کے بنے ہوں گے اور پرلز کے بنے ہوں گے. دنیا میں شاید اس چیز کو مردوں کے لیے پسند نہ کیا جاتا ہو کنگن پہننے کو، لیکن آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کنگن ہوا کرتے تھے، کنگن پہنا کرتے تھے وہ. یعنی آپ دیکھیں جو اور لباس کے علاوہ، قیمتی لباس کے علاوہ یہ خاص ان کی چیز ہوتی تھی کنگن. تو عام لوگ تو نہیں پہنتے، لیکن خاص لوگ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے، ہاتھوں میں بھی کنگن ہوتے ہیں. عام لوگ تو تاج بھی نہیں پہنتے، ہے نا؟ تو کنگن پہننا بھی بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے، سراقہ بن مالک، جب وہ مسلمان نہیں تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں جب ان کا گھوڑا جو تھا وہ آپ تک پہنچ گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت مکہ والوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار دوڑا دیے تھے کہ ان کو لے کر آئیں، تو یہ سراقہ جو تھے یہ پہنچ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب ان کا گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تھا تو اللہ کے اذن سے وہ زمین میں دھنس گیا. اس وقت انہوں نے توبہ کی کہ میں نہیں ان کو پکڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خیر مختصر میں آپ کو بس بتاتی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ان کو دعا دی تھی کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب کسرا کے شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو وہ تمہیں دیے جائیں گے. اور اس وقت تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کہاں کسرا کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. اور پھر واقعی ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں جب فارس فتح ہوا تو یہ کنگن مال غنیمت میں آئے، تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلا کے اور یہ کنگن دیے تھے. تو یعنی بات کہنے کی یہ ہے کہ سر پہ تاج پہننا جو ہے عام رواج تو نہیں ہے، لیکن اور وہ کنگن بھی پہننا عام رواج نہیں ہے، لیکن یہ ایک شاہی اعزاز ہے. اور آگے آپ پڑھیں گے سورہ دہر میں چاندی کے کنگنوں کی بھی بات آتی ہے جو کہ ان کو پہنائے جائیں گے. وہ لباس ہوں فیحا حریر، اور لباس ان کا ریشم ہوگا. ریشم بھی دنیا میں مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اسی طرح سونا پہننا بھی حرام ہے، لیکن وہاں پہ ان کے تمام کپڑے اور فرش اور پردے وغیرہ جو کارپیٹ ہوں گے یہ ریشم کے ہوں گے، سلک کے. और दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती जो फैब्रिक समझा जाता है, सिल्क को समझा जाता है ना, प्योर सिल्क। आज भी कहते हैं फलां प्योर सिल्क की चीज़, तो जाहिर है वहाँ का रेशम तो यहाँ के रेशम से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ कह समझाने के लिए ये बात है कि वहाँ का इस कदर कीमती होगा कि मुट्ठी में कितने ही लिबास मुट्ठी में इंसान पकड़ लेगा, इतना बारीक और नफीस रेशम होगा। और ये जन्नत के फलों में से निकलेगा, ये भी एक हदीस से पता चलता है। और एक और रिवायत से पता चलता है कि जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिससे रेशम पैदा होगा और अहले जन्नत का लिबास भी उसी से तैयार होगा। तो लेकिन जो इंसान दुनिया में रेशम पहनेगा उसके बारे में क्या है, क्योंकि मर्द दुनिया में नहीं सिल्क पहन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रेशमी कपड़ा दुनिया में पहनेगा वो आखरत में नहीं पहनेगा, और जो दुनिया में शराब पिएगा वो आखरत की शराब से महरूम रहेगा, और जो दुनिया में सोने चांदी के बर्तनों में खाए पिएगा वो आखरत में सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएगा। ये तीन चीज़ें अहले जन्नत के लिए मखसूस हैं। इसी तरह जो सोना है वो मर्द के लिए दुनिया में हराम है। और अफसोस ये है कि शादियों पे हम बड़े शौक से दूल्हा को जो है ना अंगूठी सोने की पहनाना और चेन सोने की देना, और ये बहुत ही आम रिवाज है। तो ये आप उनको सोना नहीं दे रहे, आग दे रहे हैं। वहाँ पे इसकी जगह पे आग होगी उनके लिए। लेकिन हमने चूंकि रस्में दुनिया निभाना होता है, इसलिए हम ज़बरदस्ती यही चाहते हैं कि हमारी नाक ना कटे, ये ज़रूर लिखा जाए कि सोने की चेन पहनाई है और सोने की अंगूठी डाली है। तो वैसे भी एक तो अजाब अलग है, और उसके अलावा जन्नत में पहुंच भी गया तो उसको सोना नहीं मिलेगा, ये सोने के कंगन नहीं वो पहन सकता वहां, क्योंकि उसने दुनिया में पहने थे। इसी तरह अगर उसने रेशम पहना, सिल्क पहना दुनिया में, तो फिर भी उसको वहां के सिल्क से महरूम रखा जाएगा। आजकल एक मशीनी सा सिल्क आ गया, वो नहीं मुराद, मतलब मशीनी सिल्क वो चीज़ नहीं है, जो रेशम होता है प्योर रेशम के कीड़े से मिलता है, वो नहीं पहनना अलाउड मर्द को। और एक हदीस में ये भी है देखें, जिसकी सनद सही है बिल्कुल, कि जिस शख्स ने दुनिया में रेशम पहना वो आखरत में नहीं पहनेगा, अगरचे जन्नत में दाखिल भी हो जाए। तो ये भी सारे अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि जन्नत में चले जाएंगे फिर तो मिल ही जाएगा, नहीं, अगरचे वो जन्नत में दाखिल भी हो जाए फिर भी दूसरे अहले जन्नत रेशम पहनेंगे ये नहीं पहन सकेगा। यानी इस कदर इस बारे में वजाहत है कि वो वहां पे भी नहीं पहन सकेगा, वो वहां पे भी उस शराब को नहीं चख सकेगा, वो वहां पे भी ये सोने के कंगन नहीं पहन सकेगा, महरूम रखा जाएगा इससे। अब आप सोचेंगे कि जन्नत और ऐसी जगह में हसरत और अफसोस रहेगा फिर उसको, तो वहां पे किसी शख्स के लिए भी हसरत अफसोस तो नहीं होगा, क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, कोई गम नहीं होगा। तो मे बी अल्लाह ताला उनके दिलों से फिर इस चीज़ की ख्वाहिश निकाल दें, हो सकता है। मगर बात कहने का मकसद ये है कि देखें दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंसान कैसे अपनी जन्नत को कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार हो जाता है। तो जन्नत में देखें जो चार किस्म के इनामात का यहाँ पे बयान है, एक तो पहली बात कि आखरत में अल्लाह ताला इनको इन जन्नतों में रखेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। दूसरा इनाम क्या है, उनका लिबास रेशम का होगा, जिसको दुनिया में अल्लाह ताला ने हराम किया आखरत में अल्लाह ताला उनको पहनाएगा, इसलिए वेट करना चाहिए वहाँ के लिए। एक हदीस में आता है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदाइन में थे, उन्होंने पानी मांगा, एक किसान उनके लिए चांदी के बर्तन में पानी लाया। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बर्तन को फेंक दिया, फिर कहा मैंने ये चांदी का बर्तन इसलिए फेंका है कि मैंने इसको चांदी के बर्तन में पानी देने से मना किया था मगर ये बाज ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोना और चांदी और रेशम और दीबा, रेशम की एक किस्म है, कुफार के लिए दुनिया में है और ये तुम्हारे लिए आखरत में होंगे। सही बुखारी की हदीस है। और तीसरा इनाम यह है कि मोमिनों को जन्नत में जेवरात पहनाए जाएंगे, और जेवर वो कहाँ तक पहनाया जाएगा इसके बारे में एक हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा नमाज का वजू कर रहे थे, वो अपना हाथ जो था बगल तक धो रहे थे, तो अबू हाजिम बयान फरमाते हैं कि मैंने कहा ए अबू हुरैरा ये कैसा वजू है, उन्होंने कहा ए चूज़े के बच्चे, यानी प्यार से। तू यहाँ खड़ा हुआ है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तू यहाँ खड़ा है तो मैं इस तरह वजू ना करता। मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जहाँ तक मोमिन का वजू पहुँचेगा वहाँ तक उसका जेवर पहुँचेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि मोमिनों को जन्नत में जेवरात पहनाए जाएंगे। और फिर जो एक और चीज़ है कि इनमें सोने के भी होंगे और मोती के भी जेवर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नाखून के बराबर अगर जन्नत की चीज़ों में से कुछ जाहिर हो तो ज़मीन और आसमान के किनारों में जो कुछ है उसको चमका दे। किनारों तक यानी दूर दूर तक हर चीज़ को चमका दे। और अगर एक मर्द अहले जन्नत से झांके और उसके कंगन जाहिर हों तो सूरज की रोशनी मिटा दे जैसे सूरज तारों की रोशनी को मिटा देता है। सोचें कि किस कदर खूबसूरत और चमकदार होंगे वो कंगन। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक रेशम का कपड़ा पेश किया गया। उसकी खूबसूरती और नज़ाकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया। लोग बड़े एकदम जैसे इंसान इम्प्रेस हो जाता है ना, हम भी देख के कई चीज़ों को ऐसे हो जाते हैं ना, वाह ये कैसे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे उनको जब ऐसी हैरत में पड़े हुए देखा ना, यानी इतने इम्प्रेस हो रहे हैं उससे, सुभान अल्लाह किस तरह से उनकी सोच को दूसरी तरफ पलट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में साद बिन मुआज का रोमाल इससे भी बेहतर और अफजल है। उनका जो एक नैपकिन होगा, एक रुमाल होगा, वो इससे भी बेहतर और अफजल होगा। सुबहान अल्लाह। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखें किस तरह उनकी यानी सोच आखरत की तरफ कर देते थे। लेकिन इसमें दाखले का, इस जगह जाने की बात को ना भूलें कि इन नेमतों के अंदर खो के इन ड्रीम वर्ल्ड में जाके और फिर उसके बाद इंसान यही भूल जाए कि करना क्या है उसके लिए। यहाँ पे क्या करोगे? ईमान और अमले साले, ये है असल पूंजी। ईमान ही वो चीज़ है जिसकी वजह से नेक अमाल भी कबूल हो सकते हैं। तो ईमान होना चाहिए और नेक अमल होने चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वहुदू इला तय्यिबि मिनल कौल, और वो रहनुमाई दिए जाएंगे तरफ पाकीज़ा बात के बात में से। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और वो रहनुमाई दिए जाएंगे तारीफ़ वाले रास्ते की तरफ। यानी कौले तय्यब पहले आया तो कौले तय्यब की तरफ रहनुमाई किए जाएंगे। उससे क्या मुराद है? यानी पाकीज़ा बात करने की उनको तौफीक मिलेगी, दुनिया में भी पाकीज़ा बात करने की तौफीक मिलेगी, तभी तो वहाँ पे जाके भी पाकीज़ा बातें करेंगे ना। देखें जन्नत में, अभी जन्नत की बात होती थी, उसमें और कौले तय्यब में क्या कनेक्शन आपको नज़र आता है? यही कि जन्नत में देखें वहाँ पे तो बेहुदा बात नहीं होगी, बेहुदा कलाम नहीं होगा, किसी को दिल दुखाने वाली बात की नहीं जाएगी। कोई गुस्सा, कोई अना, कोई कोई दूसरे को टॉर्चर करना, कोई तंज, कोई गालम गलोच, कोई इस तरह की बात है ही नहीं। जन्नत में पाकीज़ा बातें होंगी, अल्लाह की तारीफ़ की बातें होंगी। तो जो दुनिया में ऐसी बातचीत करने का आदी होगा वही वहाँ पे पहुँच सकेगा ना। तो जो दुनिया में जिसकी ज़ुबान गंदी हो, आप बताइए कि वो वहाँ पे जाके कैसे एकदम पाक ज़ुबान वाला बन जाएगा? ऐसे लोग तो नहीं वहाँ पे जा सकते ना। तो पाकीज़ा कलाम कौन सा होता है? जो गुनाहों से पाक हो। कैसा कलाम? यानी गुनाहों वाला कलाम कौन सा है? मसलन झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, बदगुमानी करना, तजस्सुस के ऊपर बेस्ड जो आप बातें करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, ताने देना, लानत करना, गालम गलोच करना, दूसरों को बुरे बुरे नाम देना, बुरे नामों से पुकारना, किसी की किरदार कुशी की गुफ्तगू करना, यानी उसको उसके किरदार के ऊपर बात करके, ये सब भी नापाक बातें हैं। तो पाक बातें कौन सी होती हैं? जो मीठा कलाम है, किसी को काटने वाला ना हो, जिसका अंदाज भी पाक हो और जिसके अंदर भी कंटेंट भी पाक साफ हो, प्यारा हो, मीठा हो। तो अंदाज भी, अंदाज पे कभी हम कहते हैं ना, अंदाज तुम्हारा खराब है, असल में तो हमारा मतलब ये नहीं था। लेकिन आपका अंदाज भी सही होना चाहिए, वो भी मोहब्बत भरा होना चाहिए, वो भी एहतराम वाला होना चाहिए, दूसरे को इज्जत देने वाला होना चाहिए। देखें, जो चाहता है कि उसके साथ अच्छी तरह बात की जाए, उसको चाहिए कि वो भी दूसरों के साथ मीठे अंदाज में, नरम अंदाज में गुफ्तगू करें। तो जो सख्ती से पाक कलाम है, जो नरम कलाम है, तो जो ये पाकीज़ा कलिमात है ना, ये वैसे अगर ये इन बातों के अलावा पाकीज़ा कलिमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी पाकीज़ा कलिमा। बाज ने कहा है कि कुरान मुराद है इससे, तो अल्लाह ने उनको ही रहनुमाई की थी इसकी तरफ, कुरान की तरफ, दुनिया में भी। और फिर जन्नत में जाके क्या होगा? जन्नत में जाने के बाद भी वो पाक कलाम करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे साथ ये वादा पूरा किया। ये उनका पाकीज़ा कलाम। उनको तस्बीह इल्हाम कर दी जाएगी, जैसे हमारी सांस चलती है ना, इस तरह से वो तस्बीह करेंगे वहां पे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी वहां पे। तो ये पाकीज़ा कलाम करने वाले हमने दुनिया में बनना है इंशाल्लाह, और ये अल्लाह की तौफीक ही है कि अल्लाह ये रहनुमाई करे हमें। ये जन्नत में ले जाने वाला काम है, ये जन्नतियों का कलाम है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें सिर्फ बात करने की तौफीक नहीं दी, बल्कि फिर ऐसे काम करने की भी तौफीक दी कि जिससे देखें सिराते हमीद की तरफ रहनुमाई की, जन्नत ये रास्ते की तरफ। तो अपने अंदर ये सिफात पैदा करनी है, ईमान, साले अमल और पाकीज़ा कलाम, इंशाअल्लाह ताला। तो यही चौथी चौथा इनाम क्या है जो इनको जन्नत में मिलेगा? चौथा इनाम है, ये चार इनामात की मैंने बात की ना, तीन मैंने आपको पहले बताए, चौथा इनाम क्या है? इनको पाकीज़ा बातों की तरफ हिदायत की जाएगी, हम्द करने वालों के रास्ते की तरफ हिदायत की जाएगी। और इसमें ये भी उलमा कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की हिदायत दी जाएगी। तो दुनिया में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, तो वहाँ पे भी यही जाके करेंगे। दुनिया में भी हर हर बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा करते थे। आगे अब इंशाल्लाह ताला कुछ हज के अहकामात हैं जो सही समझने के हैं, तो इनमें आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमा दे। रब्बी यस्सिर वला तुआसिर। इन्ना लदीना कफर व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। अब काफिर इशारा है कुरैश मक्का की तरफ, खास तौर पे तो उनकी तरफ, क्योंकि अव्वलीन तो वो ही मुखातिब थे ना। काफिर अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले, यानी खुद भी ईमान नहीं लेकर आते थे और दूसरों को भी ईमान लाने से रोकते थे। ये भी कहा जाता है कि ये आयत अबू सुफियान और उसके साथियों के मुतालिक नाजिल हुई, कि जब उन्होंने हुदैबिया के साल में, आपको मालूम है ना, 6 हिजरी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उमरा करने जा रहे थे, तो उन्होंने रोक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनसे जंग करने को नापसंद किया था, क्योंकि आपने उमरे का एहराम बांधे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोग जिन्होंने कुफर किया रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, ईमान लाने से भी रोकते हैं। इसमें ये भी बात आ जाती है, ना सिर्फ मस्जिद हराम से बल्कि ईमान लाने से भी रोकते थे। आपको मालूम है कि किस कितनी तरह की इन्होंने मुसलमानों को अजियतें दी, कितना तशद्दुद किया, कैसी कैसी पाबंदियां लगाते थे। वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से तो रोका ही, जैसे मैंने आपको बताया कि हुदैबिया के साल में। और ये सख्त तरीन गुनाह है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये एक फितना है जो कत्ल से भी ज़्यादा बुरा है, कि अल्लाह की मस्जिद से रोकना, मस्जिद हराम से रोकना लोगों को, कि ना वहाँ पे हज करने देते, ना उमरा करने देते, ना तवाफ करने देते, ना नमाज पढ़ने देते, हालांकि ये जगह किसी की भी मिल्कियत नहीं है। इसी को अल्लाह ताला ने आगे वाज़े किया है, अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअन अल-आक़िफ़ु फ़ीही वल-बाद। ये वो जगह है जिसको अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए बराबर रखा है, मुकीम के लिए भी और बाहर से आने के वाले के लिए भी, ये सब के लिए इक्वल है ये जगह। इसमें ये नहीं है कि अरबों का कुछ ज्यादा उसके अंदर वो है, या कुरैश का कुछ ज्यादा इसके अंदर हक है, या जो वहां के रहने वाले हैं उनका ज्यादा हक है। ये ऐसी जगह है जिसका अल्लाह ताला ने इसके हकूक बराबर रखे हैं सब के लिए, चाहे वो वहां पे रहने वाला हो या बाहर से आने वाला, बशर्ते कि मुसलमान हो। जाहिर सी बात है, नास से मुराद है मुसलमान। अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों के लिए इसमें हक बराबर रखा है। बराबर है का मतलब क्या, क्या चीज बराबर है इसमें? हकूक, सबके हकूक बराबर है, यानी सबको उतना ही इबादत करने का, नमाजें पढ़ने का, तस्बीह करने का सबको उतना ही हक है। जो बाहर से आने वाले हैं उनको भी उतना ही हक है जितना कि वहां के रहने वालों को है। और आज तक भी जो भी बाहर से भी आया, हज की नीयत से आए हो, उम्रे की नीयत से आए हो, उसका उतना ही हक है नमाज पढ़ने का, वहां पे प्रयाम करने का, वहां पे इतकाफ करने का, जितना कि वहां के मुकामी बाशिंदों को है। बल्कि कई दफा तो इंतजामी अरेंजमेंट्स अपने इनकी वजह से, क्योंकि रश बहुत आता है वहां पे, मुकामी लोगों को कुछ दिनों में मना कर दिया जाता है कि आपने नहीं आना। बाहर के लोगों को, जैसे हज वगैरह के दिनों में, कि बाहर के लोगों को जो कि हज के लिए आए हुए हैं उनको आप इस वक्त चांस दें। तो अल्लाह ताला ने इस जगह को बराबरी दी है, कोई इसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता कि मैं ज्यादा इसके, मैं फलाने घराने से हूं, या मेरा मकाम बहुत ऊंचा है, या मैं नेक बहुत ज्यादा हूं, मेरा हक ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, ए बनी अब्दे मनाफ, किसी को अल्लाह के घर से, के तवाफ से मत रोको, नमाज पढ़ने से मत रोको। यानी कुरैश के कबीले को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया था। तो उस जमाने में भी बाहर से भी लोग आया करते थे हज के लिए, उम्रे वगैरह के लिए, और किसी को भी हक नहीं था उस वक्त भी रोकने का। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतनी ज्यादती की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को इस चीज़ से रोका, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे के लिए फिर क्या कहा जाता है कि जो किसी को भी मस्जिद हराम से या सफा मरवा से, और मस्जिद हराम से मतलब ये नहीं है सिर्फ काबे का बात नहीं है, बल्कि मस्जिद हराम से मुराद वो सारा ही एरिया है जो मक्का का है, यानी पूरा हरमे मक्का, पूरा का पूरा, उसमें जाने से नहीं रोक सकते। तो जो कोई मस्जिद हराम से रोके या सफा मरवा की पहाड़ियों से, सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है ना, ये मीना से, मुजदलिफा से, अरफात से, जमरात से, मक्का की जमीन से, तो सब के लिए ये बराबर है। ये जगह किसी की मिल्कियत नहीं है, यहाँ पे कोई किसी मुसलमान को इबादत करने से या ठहरने से मना नहीं कर सकता, ना मक्का के इन हिस्सों को कोई अपनी वो समझ सकता है कि मैं इनका मालिक हूँ और मैं जिसको चाहूँगा उसको इजाज़त दूंगा आने की, ये नहीं हो सकता। अब आगे यहाँ पे ये कई, यानी आप तफासीर में देखेंगे कि ये भी आया है कि भाई फिर इन ज़मीनों को बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। तो इसमें दोनों तरह की राय हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, इनको कोई बेच भी नहीं सकता, इनके ऊपर कोई अपना हक ही नहीं जता सकता, कोई इनका मालिक है ही नहीं। और बाज़ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो खैर वो तो लंबी, अब इस बहस में हम नहीं जाते क्योंकि इसको कोई, अभी फिलहाल के लिए हमारी अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इस वहाँ की किसी ज़मीन के मालिक या ना कुछ है। तो बस समझने की ये बात है कि इसके अंदर उलमा ने दोनों तरह की बात की है। वमई युरिद फी ही बिल ए बि इल्हादिन, और जो कोई इरादा करे इसमें इल्हाद का, इल्हाद मैंने आपको क्या बताया, इल्हाद का माना क्या है, जो भी यानी दीन से हटे, सीधे रास्ते से हटे, कोई गुनाह का काम इसमें आ जाता है, बिजुल्मिन साथ जुल्म के, जो कोई इरादा भी करे जुल्म व ज्यादती का, यानी यहां पे किस जगह की बात हो रही है, मक्का में हरम की हदूद के अंदर जो कोई इल्हाद करता है, इरादा भी करता है किसी जुल्म व ज्यादती का, नुज़िक़हु मिन आज़ाब बिन अलीम, हम चखाएंगे उसको दर्दनाक अजाब। एक तो इल्हाद क्या है, लोगों को रोकना, वहां पे आने से रोकना, ये इल्हाद हो गया। और इल्हाद क्या है सबसे बड़ा, तो सीधे रास्ते से ही हट जाना, यानी शिर्क करना। तो जो शख्स यहाँ पे शिर्क का इरादा भी करेगा, उसके बारे में भी ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हम इसको दर्दनाक अजाब देंगे। और इसके अलावा फिर इल्हाद में सारे ही गुनाह आ जाते हैं। कोई भी गुनाह का इरादा भी करे, किया नहीं है अभी, इरादा भी करे, तो उसके ऊपर भी उलमा यही कहते हैं कि इरादा करने के ऊपर भी यहाँ पे पकड़ है, तो कोई इरादा भी नहीं कर सकता। आप देखें वो इतनी हुरमत वाली जगह है, ऐसी अमन वाली जगह है जिसको अल्लाह ताला ने अभी से नहीं, रोजे अव्वल से इसको अमन वाली जगह बनाया। वहां पे जाके यानी काफिरों के वक्त में भी ये हाल था कि कभी कोई अपने बाप के कातिल को भी उस जगह देख लेता था तो उसको नहीं पकड़ता था। क्यों? वो एहतराम करता था वहां की हदूद की, हरम की एहतराम का एहतराम होता था। तो इसलिए ऐसी जगह में जाके अगर कोई किसी गुनाह का इरादा करता है, मसलन कोई ज़खीरा अंदोजी करता है, या जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उनको करता है, या कत्ल करता है, या किसी जानवर का शिकार करता है, वहाँ पे आपको पता है ना किसी चीज़ का शिकार भी नहीं कर सकते। अब ख़ास तौर पे ये बातें वो लोग भी समझ लें जो हज और या उम्रे का इरादा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रखते हैं ना, तो इसलिए इन बातों को फालतू नहीं समझेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें वहाँ पर लेकर जाए, तो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना, फौज गोई करना, फौजकुशी करना, या इवन यहाँ तक कि बिला वजह हथियार भी उठा के चलना नहीं जायज़ वहाँ पे। अगर कोई मुजरिम वहाँ पे पनाह ले ले तो उसको भी जाके वहाँ पे नहीं पकड़ सकते, जबकि वो हदूद से जब तक बाहर ना जाए, वहाँ के पौधे घास वगैरह ये इसको नहीं उखेड़ सकते। तो किसी जानवर को शिकार के लिए हांका भी नहीं जा सकता कि भाई उसको वहां से निकाल के ले जाएं बाहर कहीं, फिर जाके वहां पे जाके उसका शिकार किया जाए, ये भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि कोई गिरी हुई चीज़ है वो भी नहीं उठा सकते, इल्ला ये, सिवाय इस चीज़ के कि आपको उसके मालिक का पता है, तो फिर आपने कहा कि भाई मैं उस तक पहुंचा दूंगी इसलिए मैं उठाती हूँ, तो वो जायज़ है। लेकिन अदरवाइज आप कोई गिरी पड़ी चीज़ भी नहीं उठा सकते कि आपने कोई वॉलेट देखा, आपने कोई कोई चीज़ देखी, नहीं गिरी हुई आप उसको गिरी रहने दें। तो अल्लाह ताला ने इतनी अमन वाली जगह इसको बनाया, किसी को भी वहां पे गुनाह की इजाजत नहीं है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से एक जगह ये भी तफसीर है मनकूल कि हरम के अलावा दूसरी जगहों में सिर्फ गुनाह का इरादा करने से गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक अमल ना करें, लेकिन हरम में सिर्फ पक्का इरादा कर लेने पर भी गुनाह लिखा जाता है। कि कोई कहे कि मैं अब यहाँ से निकलूँगा ना तो उसके बाद मैं फलां गुनाह करूँगा, फलां के साथ मैं ये करूँगा, मैं ज़रा उसका उसको ज़रा पूछूँगा, फिर मैं ज़रा उसकी खबर करूँगा, फिर मैं ज़रा ये काम करूँगा, जो गुनाह के काम है, मैं सूद खाऊंगा या मैं ये करूंगा, जो गुनाह के काम है उनका इवन यहाँ तक के इरादा भी वहां पे नहीं बना सकते, उसका प्रोग्राम भी नहीं बना सकते। सहाबा कराम तो इतनी एहतियात करते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह हज के लिए जाते तो दो खेमे लगाते थे, एक हरम के अंदर और दूसरा बाहर। हरम से पता चल रहा है ना आपको, हरम की हदूद है ना जिनसे आगे फिर कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लेकर जाए तो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इससे आगे सिर्फ मुसलमान ही जा सकता है, गैर मुस्लिम एंटर ही नहीं हो सकता हरम की हदूद में। तो हरम में अगर वो अपने अहलो अयाल या खादिम या और किसी को किसी बात के ऊपर सरजनश करना चाहते थे, कोई डांटना चाहते थे, कोई पकड़ करना चाहते थे, तो हरम से बाहर वाले खेमे में जाके ये करते थे, यानी इतनी वो एहतियात करते थे। और होता ये है कि जब वहां पे जाते हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही है, फिर कोई तू तू मैं मैं हो रही है, कोई बहसें छेड़ रही हैं, और हम देखें कि आज तो हमने हरम की हदूद को ऐसा पामाल किया हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि जेब कतरे वहां पे हैं, जब कोई वहां पे जाने लगता है हम उसको इतनी हिदायत करते हैं यहाँ पे पैसे डालना और वहां पे ना रखना, और जेब कट जाएगी और पता ही नहीं चला जेब कट गई कब तवाफ करते हुए। इसी तरह औरतों के साथ उनको साथ छेड़खानी करने से नहीं लोग चूकते वहां पे, ऐसे भी वाकयात होते हैं, और लड़ाई झगड़ा करने से। वहां पे हाथापाई हो रही होती है। तो देखें, ये चीजें ममनुआत में से हैं। काफरों ने भी इस जगह का एहतराम किया और हम अपने आप को मुसलमान कह के और फिर हरम की हदूद में जाके ये सब काम करते हैं। यानी ये नहीं कि आप मस्जिद में एंटर हो जाएंगे तो फिर नहीं आप करेंगे, वो सारी हरम की हदूद जो है उनमें से किसी जगह पे भी नहीं आप ऐसा काम कर सकते। दुकानों पे खड़े में और वहां पे मुंह मारियां चल रही हैं। इसी तरह यानी मर्दों की निगाहें जो हैं वो नहीं कंट्रोल में, फिर इसी तरह चोरी चकारी आम है। तो ये तो देखें ऐसी जगह है जिसको रोजे अव्वल से अल्लाह ताला ने अमन वाली जगह बनाया, और वहीं जाके इंसान की एक तरह से आजमाइश हो जाती है कि वहां जाके कितना आप इख्तलाफ से बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं। अब ठीक है चोरी चकारी ना सही, मगर आप ये बताएं कि तकरारों से बचते हैं, बहस मुबहसे से बचते हैं। अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि आगे पीछे हम मियाँ बीवी में ना भी लड़ाई हो, वो वहां पे जाके इतनी लड़ाई हुई। तो वहां जाके कोशिश करनी है आपने कि ऐसी कोई बहस मुबहसा भी ना हो, सुलह सफाई से रहें, कहीं तलखी ना आए। क्योंकि अमल वाली जगह में जाके भी अगर हमने अमन से नहीं रहे तो उस जगह की इज्जत की वजह से ऐसे करना है, उसकी हुर्मत है। तो अगर हमने उसकी हुर्मत का एहतराम नहीं किया तो फिर देखें हम तो इम्तिहान में वहीं फेल हो गए ना। फिर उसके अलावा वहां पे कई दफा आपको कई मुश्किलात हो जाती हैं, बस लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत हो गई, फलां हो गया, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। फिर लोग खामखा की एक यानी लड़ाई झगड़े में पड़े होते हैं और ऐसी गालम गलोच तक नौबत पहुंच जाती है। तो इस जगह का एहतराम करना सीखें। हमें हम चले तो जाते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि उस जगह का क्या एहतराम है, कैसे वहाँ पे रहना है। उस हद में दाखिल होते ही हमें अपने ऊपर एक चेक लगा लेना है, एक यानी अपने आप को समझ लें कि हम बंद गए हैं, अब उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। एहराम की वैसे ही एहराम की वजह से आप बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि आप आम हालात में भी कर सकते, मगर उसके अलावा भी उस जगह की इतनी हुरमत है, चाहे आप एहराम से निकल भी आए तो। हम एहराम से निकलते कहते हैं अब सब चीज़ें जायज़ हो गई, अब चाहे लड़ो झगड़ो। तो इसलिए ये बातें पहले सीखने की हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की समझ अता फरमाए और उस घर में पहुंचने से पहले ही हमें इस चीज़ की समझ दे दे कि वहां जाके ना हम इस तरह के काम करें। तो इल्हाद जो है ना वैसे भी नहीं जायज, लेकिन उस जगह पे जाके इल्हाद का इरादा भी जायज नहीं है। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोग हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। नंबर वन, हरम में इल्हाद करने वाला, हरम में कोई गुनाह का काम करने वाला। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि अगर हमसे वहाँ पे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से उस जगह की हमने यानी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, अल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर हमें माफ़ फरमाए। और नंबर दो, इस्लाम के या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ के जाहिलियत के तरीके को अपनाने वाला। और नंबर तीन, किसी मुसलमान का ना हक खून तलब करने वाला ताकि वो उसका खून बहाए यानी उसको कत्ल करने वाला। ये लोग जो है ना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। मेरे ख्याल में नंबर दो में तो बहुत सारे लोग आ जाते होंगे जो इस्लाम के तरीके को छोड़ के जाहिलियत के तरीके अपनाने वाले हैं। आज भी ऐसे लोग हैं अपने आप को, लेकिन हम पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन जाहिलियत के तरीके हमें बहुत पसंद होते हैं। इस्लाम के अलावा के तरीके हमें बड़े अच्छे लगते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये तीन किस्म के लोग ना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अब आगे जिक्र आ रहा है अल्लाह के घर की हिस्ट्री का, उसकी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री का, कि तुम कैसे रोकते हो अल्लाह के घर से लोगों को जबकि तुम्हें पता नहीं है कि किसने इस घर को तामीर किया। वो जो खुद सबसे बड़े तौहीद वाले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इस बव्वाना ली इब्राहिम मकान अल बैत, और जब मुकर्रर कर दी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए घर की जगह, कौन से घर की, बैतुल्लाह की जगह अल्लाह ताला ने मुकरर कर दी। क्या मतलब है? आपको मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जब तूफान नूह आया था तो उस वक्त ये घर गिर गया था। और फिर अल्लाह ताला ने इस घर की जगह, जो इस घर की तामीर है और इसकी जो बुनियादें हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जाहिर की कि वहाँ पे एक हवा चली और उससे ये बुनियादें एक्सपोज हो गई और फिर यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, अल्लाह का घर बनाया। कहा जाता है कि काबतुल्लाह को 5 दफ़ा बनाया गया। पहली दफ़ा आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उनसे पहले भी फरिश्तों ने बनाया था, उस वक्त ये सुर्ख याकूत से बना हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में फिर इसकी बुनियादें उखड़ गईं, उसको दूसरी दफ़ा फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। तो यही पता चलता है कि उनको तो नहीं पता था ना कि किस जगह पे बैतुल्ला को बनाना है। फिर अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी थी, इसने काबे की बुनियादों से जो भी ऊपर कूड़ा करकट था या जो भी ऊपर यानी डस्ट थी या मट्टी थी, उसको साफ कर दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को इसकी जो पुरानी बुनियादें थी उसी पर कंस्ट्रक्ट किया। और तीसरी दफ़ा इसको ज़माने जाहिलियत में कुरैश ने बनाया था, और वो आपको वाकया याद होगा कि जब वो हिजरे अस्वद का मामला ज़ेरे बहस आ गया था कि कौन इसको नसब करेगा, तो उस वक़्त फिर वो आखिर में, जो लंबी बात है, तो लेकिन आखिर में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत मिली थी। ये तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 15 साल पहले का वाकया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 25 ईयर्स के होंगे। और चौथी दफ़ा इसको अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने बनाया था, और 5वीं दफ़ा इसको हज्जाज ने बनाया था, और वही बुनियाद आज तक कायम है। इसकी जो हाइट है वो 27 फीट, 27 हाथ कहा जाता है, तकरीबन 40 फीट बनती है। और इसकी लंबाई जो रुकने यमानी से हिजरे अस्वक तक है वो 25 हाथ है, जो तकरीबन 35 फुट तक बनती है, 35 फीट तक ना। तो इस पर जो मशरक़ की जानिब में सागवान की लकड़ी का दरवाज़ा है जिस पर चांदी से काम किया गया है, ये इसकी थोड़ी सी तारीख है। तो अल्लाह ताला ने ये घर बनवाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उस वक़्त। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, जो तौहीद का सिंबल है, कैसे आए तुम तौहीद पर चलने वालों को इस घर से रोकते हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझे कि वो मुशरकीन मक्का मुसलमानों को रोक रहे हैं इस घर का उमरा करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम कैसे रोकते हो इनको, तुम ये तो देखो कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसको बनवाया और किस मकसद के लिए बनवाया। अल्ला तुशरिक बी शैआ, कि ना तुम शरीक ठहराओ मेरे साथ किसी चीज़ को, इसीलिए बनवाया गया ये घर। क्यों घर बनाया? ताकि शिर्क ना हो यहाँ पे। तो ये पहला घर इस दुनिया में बना जो अल्लाह की इबादत के लिए, जब दुनिया कायम हुई थी तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे पहली इबादत गाह कौन सी थी, तो वो यही घर अल्लाह का, ये पहली दफ़ा यही दुनिया में कायम हुआ था, उसके बाद बैतुल मक़दस। तो जब देखें उस वक्त अल्लाह ताला ने क्यों बनाया इस घर को, ताकि शिर्क ना हो यहाँ पे। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या शिर्क करना था? नहीं, उनसे तो ये चीज़ यानी बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। फिर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझ जाएं कि इस घर में शिर्क नहीं होगा। इसकी बुनियादी इस चीज़ पे रखी गई है कि यहाँ पे शिर्क नहीं किया जाएगा। और देखें अब जब आप काबतुल्ला पे जाते हैं तो ये बात भी सोचा करें कि ये कब से मौजूद है? आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से। आदम अलैहिस्सलाम ने भी ज़मीन पर जब आए तो उन्होंने भी आके इस घर का तवाफ़ किया, और उनके बाद बहुत से अंबिया ने इस घर का तवाफ़ किया। और फिर किस नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियादें उठाई थी इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके, कि इसीलिए कि यहाँ पे शिर्क ना हो। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ लोग वहाँ पे भी जाके कुछ ऐसे काम करने से बाज नहीं आते कि जो शिर्क पे मबनी है। नहीं, अगर मेरे अपने सामने ये वाकया ना हुआ होता तो शायद मैं ना यकीन करती। लेकिन किसी को मैंने ये कहते हुए सुना जब उन्होंने कहा कि दुआ करिएगा मेरे बेटे को अल्लाह ताला औलाद दे दे, तो दूसरी साहिबा जो हजी करने के लिए आई हुई थी उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिएगा, वो सिंध में एक दरगाह है कोई, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके ना आप धागा बांधिएगा तो देखना आपके बेटे को औलाद हो जाएगी। अब आप देखें शिर्क की बातें वहां बैठ के, काबतुल्ला सामने है और शिर्क करने से लोग नहीं बाज आते। तो देखिए अल्लाह ताला ने तो इस घर को बनाया ही इसलिए कि शिर्क यहां पे ना हो, और मुशरिकीने मक्का ने भी वहां पे बुत रख दिए थे, वो भी तो यही कहते थे ना कि बुतों ने तो कुछ नहीं, असल में तो हमारा रब एक अल्लाह ही है, लेकिन असल में तो ये बुत ही हमें उस तक पहुंचाएंगे, बुत के जरिए ही हम पहुंचेंगे ना, इन्हीं के जरिए पहुंचेंगे, ये तो हस्तियां हैं, ये तो सिर्फ सिंबल ही हैं, हम कौन सा बुतों को पूजते हैं। आज भी ना मुशरिक यही कह रहे हैं ना, ये तो एक सिंबल ही है, जैसे तुम्हारे लिए काबा एक सिंबल है, तो हमारे लिए हमने मट्टी के ये या पत्थर के बनाए हुए ये खड़े किए हुए, थोड़ी हम ये कह रहे हैं ये हमें देते हैं, असल में तो वो हस्तियां हैं, वो हस्तियां ही जाके वो एक बड़े के सामने हमारी सिफारिश करेंगी। तो ये सारी शिर्क की ही किस्में हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे मुसलमान कर रहा हो या काफिर कर रहा हो, ये कुछ हस्तियां हैं जो हमें अल्लाह तक पहुंचाएंगी, क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते खुद, तो इसलिए इन हस्तियों के थ्रू जाना जरूरी है, तो इन हस्तियों को खुश भी करना जरूरी है, इसीलिए इनके सामने झुकते भी हैं, इनके सामने आजी भी करते हैं, इनके सामने नजरो न्याज भी रखते हैं, क्योंकि ये हमें अल्लाह तक पहुंचा सकती है, हम गुनाहगार किधर पहुंच सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखें, कुफार का भी यही था, आज मुसलमानों का भी यही है, चाहे वो किसी को भी बीच में डालें, किसी फौतशुदा को, या वो पत्थर के बुतों को, या उनको किसी हस्तियों को डाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि वो हस्तियां फौत हो गई हैं, वो फौत हो गई चली गई, वो हमें लेकर जाएंगी अल्लाह तक। अल्लाह ताला ने तो फरमा दी ना शरीक ठहराओ मेरे साथ किसी चीज़ को, और आगे आप देखेंगे जो शिर्क की यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की आयत आ रही है आगे, और ताहिर बैती अल तौईफीन वल क़ाइमीन वर रुक्का इस सुजूद, और पाक कर दो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, और नमाज का भी क़याम हो सकता है यहाँ पे मुराद, और जम के इबादत करना भी इससे मुराद हो सकता है, उसमें भी एक जगह कायम होना होता है ना, एक जगह कायम रहना, यानी इतकाफ की तरफ इशारा हो सकता है, वर रुका इस सुजूद, और रुकू करने वाले सज्दा करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए। आप देखें एक सिर्फ दुनिया में ऐसी जगह है जिसका आप तवाफ कर सकते हैं, उसके अलावा आप दुनिया में किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का तवाफ नहीं कर सकते, ये याद रखें, और वो है अल्लाह का घर, आप सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ कर सकते हैं, किसी चीज का, किसी इंसान का तवाफ भी नहीं कर सकते आप, किसी जगह का तवाफ नहीं कर सकते आप कि उसके गिर चक्कर लगा रहे हो। लोग कब्रों का आज तवाफ करना शुरू हो गए, हालांकि तवाफ सिर्फ इस घर का हो सकता है और रोजे अव्वल से हो रहा है। तो देखें कैसी कैसी गंदगियां हमने अपने दीन में शामिल कर ली हैं। कई कब्रों का तवाफ आज होता है, लोग करते हैं, कहते हैं वहां पे तो जा नहीं सकते, चलो इन्हीं का तवाफ कर लें, यही हमारे लिए काबा व किबला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस जगह को पाक करना, पाक रखना, सफाई रखना, और पाकी दोनों तरह की होती है। देखें एक तो है वैसे जाहिरी सफाई करना, क्लीनलीनेस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल पाक साफ रहे ये जगह, ये अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था, मेरे घर में शिर्क भी नहीं होना चाहिए और यहाँ ये इसको साफ रहना चाहिए। और देखें अल्लाह का घर, तमाम मसाजिद भी अल्लाह का घर ही है, उनकी भी सफाई सुथराई का हमें ख्याल रखना चाहिए, और किसी मैनेजमेंट के डर की वजह से नहीं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं कि कोई देख लेगा, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझ के, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे घरों को पाक साफ रखो, लोगों के आने के लिए जो इबादत करने आने लगते हैं उनके लिए। तो लेकिन हमने उनका क्या हालत बनाई होती है, जब हम उनके रेस्ट रूम यूज़ करते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कोई पब्लिक रेस्ट रूम है, तो ठीक है जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें, और इसी तरह जो कूड़ा घर का गंद होता है वो ले जाके वहाँ पे डालते हैं कि कोई ले जाएगा। चीज़ें वहीं पे छोड़ आते हैं, खाने पीने की चीज़ें वहीं पे पड़ी होती हैं। तो अल्लाह के घरों की यह इज्जत है, हुर्मत है कि उनको पाक साफ रखा जाए। और दूसरी पाकी साफी क्या होती है? कुफर और बुत परस्ती से, क्योंकि कुफर और बुत परस्ती जो है ना, शिर्क कुफर, ये जो है ना, ये निजासतें हैं, गंदगियां हैं। आगे भी इनको गंदगी कहा गया कि ये गंदगी है, इससे भी इनको पाक रखो, इस घर को, ताकि लोग यहाँ पे आके तवाफ कर सकें, अल्लाह ही का जिक्र करें, उसी के सामने रुकू और सजदे करें। तो जो मस्जिद भी हैं अल्लाह की इबादत के लिए, जो भी जगह मखसूस है, वहां पे भी शिर्क, अदना सा भी शिर्क का काम नहीं होना चाहिए। और अदना शिर्क क्या है? खफी शिर्क क्या है? रियाकारी, जरा सी रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें, वहां पे ज्यादा ही चांस होता है रियाकारी का, क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ रहा होता है तो देखता है कोई आके पास बैठ गया, दिल में एकदम ख्याल आता है, अच्छा अब ये आ गई है तो अब कहेगी कि कितनी अच्छी नमाज पढ़ रही है ये, तो मेरी नमाज ज़रा अच्छी हो जाए, ज़रा ठहर ठहर के हो जाए, सजदा ज़रा और लंबा हो जाए, रुकू भी थोड़ा और लंबा हो जाए। ख्याल तो ये दिल में आएगा, शैतान लाता है, झटक देना इस ख्याल को और खालिस कर लेनी है अपनी नीयत सिर्फ अल्लाह की खातिर। उसके बाद जब ये घर बन गया, तो अब अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज, ऐलान कर दो लोगों में हज का। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दें। या अतू का रिजाल व आला कुल्ली दामिर या तीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, वो आएंगे तेरे पास पैदल भी, व आला कुल्ली दामिर, और हर लागर ऊंट पे, कमजोर ऊंट पे, या तीना आएंगे कहाँ से? मिन कुल्ली फज्जिन, हर एक कुशादा रास्ते से, अमीक, दूर दराज के रास्ते से भी। जब ये घर बन गया, उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, इन सब लोगों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? अब देखें ना, बियाबान सी जगह है, इतनी कोई आबादी तो है नहीं वहां पे, अब क्या किया जाए? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, आप फिक्र ना करें, आप बस आवाज़ दें, लोग आएंगे, आप ऐलान कर दें लोगों में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप ऐलान कर दें, आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है। और देखें, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐ लोगो, तुम पर इस कदीम घर का हज फ़र्ज़ कर दिया गया, बस तुम हज करो। तो कहा जाता है आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक ने इस ऐलान को सुना, और आज आप देखते हैं वही ऐलान है कि जिसकी वजह से ज़मीन के दूर दराज के इलाकों से लोग तलबिया पढ़ते हुए हज के लिए आते हैं। कोई जहाज़ों में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई बहरी जहाज़ों में आ रहा है, कोई गाड़ियों पर आ रहा है, कोई ऊँट पर आ रहा है, कोई कि हर तरह की सवारी के ऊपर लोग वहां पे पहुंचे हुए। ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे खड़े होकर आवाज लगाई थी, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे पर हज फर्ज कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये आवाज उन सबको सुना दी जो मर्दों की पुश्त में और औरतों के रहमों में थे, यानी जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उन सबको भी आवाज पहुंचा दी। और उनमें से लोगों ने, उनमें से जो अभी पैदा नहीं हुए थे, इसका जवाब दिया, जो अल्लाह के इल्म में कयामत तक हज करने वाले थे, उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुभान अल्लाह। तो जो जो लोग हज कर चुके हैं, इसका मतलब उन्होंने उस वक्त उनकी रूहों ने कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जो जिनको अभी नहीं हज हो सका, तो वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हज की तौफीक अता फरमाए, मगर हज अब वो ही करेगा जिसने उस वक़्त कहा था। अल्लाह ताला ने ये भी कहा जाता है, मुजाहिद बयान करते हैं, मुफस्सिर है एक, कि बयान करते हैं कि 7 समुंदरों की गहराई तक ये ऐलान अल्लाह ताला ने सुनवा दिया था, और क़यामत तक वही हज कर सकेगा जिसने इस निदा पर लब्बई कहा था। तो अगर हमारी रूहों ने कहा था, तो फिर हम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखें, ये भी आप देखें कि ठीक है, ये तो एक कॉल थी हज की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो दी, और अब आप फिक्रमंद हो रहे होंगे, पता नहीं मेरी रूह ने कहा था कि नहीं कहा था लब्बैक उस वक़्त। मगर उसके अलावा भी तो कितनी ही कॉल्स होती हैं जो नेकी के कामों की होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं। चाहे वो इससे छोटे काम हो, मगर कॉल्स तो आती है ना, कई दफा में बुलाया जाता है ना नेकी के काम के लिए। बताएं उस वक्त हम कितनी दफा लब्बाई कहते हैं, मैं हाजिर, मैं आ गई, मैं करूंगी ये काम, कितनी दफा आप आगे आते हैं। और अल्लाह ताला उसी को बड़ी नेकी की भी तौफीक देता है जो अपनी सामने जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं उनसे पीछे नहीं हटता, जो आगे बढ़ बढ़ के वो करता है। तो जिंदगी में तो नेकी की बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं। आज तो आप जिंदा हैं, इस दुनिया में आ चुके हैं, अब आप कितनी दफा कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्योंकि जो भी नेकी का काम है वो किसी इंसान के लिए नहीं है, वो अल्लाह की एक यानी अल्लाह के दीन का काम है, उसके दीन की कोई खिदमत का काम है, मुसलमानों की फलाह का कोई काम है, वो अल्लाह का काम है। और वो कॉल बज़ाहिर इंसान की, उस जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कॉल दी थी लेकिन हज की थी ना, इसी तरह आज कॉल्स होती हैं बज़ाहिर तो इंसानों के मुंह से निकलती है वो बात, कॉल तो इंसान की तरफ से ही आती है, मगर जो अल्लाह के काम के लिए आती है तो अल्लाह की तरफ से पुकार है, उस पर लब्बैक कहना चाहिए। तो आप देखें कितनी बड़ी बात है, जब हजरत हाजरा यहाँ पे आके बसी होंगी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस जगह का ये मकाम हो जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे ऐसे लोग, हर तरफ से लोगों का एक सैलाब आ जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब हज का ऐलान किया, कि आप सोचते हैं कि उन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ पे इस तरह से लोग यानी लाखों की तादाद में हर साल हज करने के लिए आएंगे, शायद उन्होंने तो सोचा भी ना हो कि इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन उन्होंने देखें अपना काम किया और पूरे खलूस के साथ किया, और जब उन्होंने खालिस होके और अल्लाह ताला पे भरोसा करके ये काम किया, वरना देखें बजाहिर तो नजर नहीं आ रहा था ना कि भाई एक बंदा खड़ा होके एक जगह आवाज़ दे तो क्या वो सोच सकता है कि मेरी आवाज़ इतने लोगों तक पहुंच जाएंगी, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो उन्होंने अल्लाह के भरोसे के ऊपर ये ऐलान किया, बजाहिर असबाब कुछ भी नजर नहीं आ रहे लेकिन अल्लाह ताला ने उनके काम को कैसे कबूल किया कि उनके इस आवाज़ की बरकत से आज तक लोग हज कर रहे हैं। तो हमें इतना बड़ा सबक है ना इसमें कि हम अब दुनिया में आए हैं अपने हिस्से का काम कर जाएं, बाकी आगे अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि वो किस तक हमारी बात पहुंचाता है, कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, किन लोगों को हिदायत मिलती है, हम अपने तौर पे कह जाएं, हम ऐलान कर जाएं, हम बता जाएं, आगे दिलों तक बात पहुंचाना वो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ही है जो दिलों में गुंजाइश पैदा करता है। तो ये हमारा काम नहीं कि हम अंजाम को देखें कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त सोचते कोई लो अभी तक किसी ने सुना तो है नहीं, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँची होगी, क्या 1 किलोमीटर तक चली होगी, होगी इससे ज़्यादा क्या जा सकती है, तो क्या फ़ायदा ये करने का। हम ज़्यादातर यही कहते हैं ना, कोई भी नेकी का काम हो हम कहते हैं क्या फ़ायदा करने का, लो कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, लो कोई आ तो रहा नहीं है, और ये भी हमें मालूम नहीं है क्या पता अभी जो काम हम कर जाएं इसके इतने फार फ्लंग इफ़ेक्ट्स हों कि हमारे दुनिया से जाने के बाद इसके असरात नमूदार हों, इसके असरात पता चलें। हम नहीं जानते, क्या मालूम कि हम किसी एक बंदे की हिदायत का जरिया बन जाए, मसलन किसी एक को हमने क्लास का रास्ता दिखा दिया, क्या मालूम कि वो एक बंदा आके और इतना अच्छा सीखे कि हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम करे आगे जाके, क्या पता कोई एक बंदा सुन ले आके और हमें पता भी नहीं है, हमने उसको बाय द वे ही बताया था, क्या पता है कि वो सुनने वाले को हम भूल भी चुके हैं और वो फिर आगे जाके इतनी नेकियां करे कि वो सब हमारे खाते में सवाब लिखा जाए। तो ऐलान करने से बताने से कभी पीछे ना हटे, बताएं आगे लोगों को, हर नेकी की बात को, हर खैर की बात को आगे फैलाएं, हम नहीं जानते। अगर हमने इंशाल्लाह इखलास से किया होगा वो काम, अल्लाह के भरोसे पे किया होगा, तो आप देखिएगा उसका अंजाम, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और उसका नतीजा जरूर निकलता है फिर। तो काम करना हमारा, हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? काम करने पे, रिजल्ट पे नहीं। और कभी इससे मायूस ना हो। अब देखें, उन्होंने भी, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको बिना चू चरा आगे ऐलान करने खड़े हो गए। हम पहले कहते हैं, लो मुझे तो समझ ही नहीं आती, ऐसे होगा कैसे, ये बनेगा कैसे, ये काम चलेगा कैसे। नहीं, इसमें नहीं आपको अकल लड़ाने की जरूरत। हमारी अकल में आए ना आए, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, आगे इस बात को फैलाओ, आगे इस बात को करो, आगे पहुंचाओ, आप करते चले जाएं। ना देखें इसमें ना असबाब के ऊपर भी वो नहीं करें कि मेरे पास असबाब होंगे, मेरे पास ये अब होगा, फिर ही मैं ये काम करूंगी, फिर ही मैं कहूंगी, फिर ही मैं कुछ बताऊंगी। नहीं, ये दुनिया का ऐसा काम है जिसमें असबाब अल्लाह ताला ही मुहैया करता है, असबाब अल्लाह पैदा करता है। देखिए, ये बहुत बड़ी हमारे इसके अंदर मैसेज है हमारे लिए, इतना बड़ा सबक है हमारे लिए इस एक बात के अंदर, कि उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था, आज वाकई पैदल भी आ रहे हैं। और उस वक्त ऊँटों के ऊपर लोग नहीं आया करते थे, सवारियों पे नहीं आया करते थे, लेकिन उसके बाद लोग हज के लिए दूर दराज से ऊँटों पे भी आया करते, और पैदल भी। आज भी किसी ने बताया था कि कोई लोग वहां पे पैदल आए हुए थे, कहीं दूर दराज एरिया से 4-6 महीने के लोग सफर कर करके आते हैं। बहरी जहाजों में भी लोग देखें, दुनिया जहान से कितने महीने लग जाते हैं उनको, फिर पहुंचते हैं वहां पे। तो दूर दराज इलाकों से, वाकई अमीक से, दूर के जगहों से लोग आते हैं। तो हज के हवाले से ये कुछ शराइत भी हैं, लेकिन एक ये कि उस इंसान पे जो अकल वाला हो उसके ऊपर ही हज फर्ज है, यानी मजलून लोगों के लिए फर्ज नहीं है। आम तौर पे हम देखते हैं ना कि किसी खानकाहों पे, दरगाहों पे जो लोग मौजूद होते हैं, दीवाने किस्म के होते हैं, जो भी हैंडीकैप्ड सा हो जाता है या मेंटली रिटार्डेड होता है, तो उसको वहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो हज के लिए ऐसा नहीं है। हज के लिए शर्त है कि अकल सलामत हो। नंबर टू ये कि बालिग हो, बच्चा भी कर सकता है हज, लेकिन उसका फिर उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। फ़र्ज़ तभी अदा हो सकता है जब वो बालिग हो। और नंबर थ्री, आज़ाद हो और इस्तात हो उसके पास ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि कौन से आमाल अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। पूछा गया उसके बाद, फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह। पूछा गया फिर, फरमाया हज मबरूर, यानी नेकियों से भरा हुआ हज। और आपको पता है ना, औरतों के लिए तो हज को कहा गया कि वो जिहाद है। औरतों का जिहाद क्या है? हज। और जिन औरतों को शौक है कि वो देखो ये जिहाद के अल्लाह ताला ने कितने फजाइल बताए हैं और ये हैं, तो मैं भी जिहाद पे जाती, लेकिन आप हज कर लें वो आपके लिए जिहाद है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह की शान के लिए हज किया, ना कोई फोहश बात की, ना कोई गुनाह किया, तो वो उस दिन की तरह वापस लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसको जना था, जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था, कैसे प्योर था वो, कैसे मासूम था, कैसे गुनाहों से पाक था ना, इस तरह से वो उस दिन हो जाएगा जिस दिन उसने हज किया। लेकिन शर्त क्या है? कोई गुनाह नहीं वहां पे किया, कोई फोहश बात नहीं की। तो देखिए, वहां पे हम बहुत केयरफुल तो इस चीज से रहते हैं कि हमारी बाल ना टूट जाए, ये ना हो जाए, लेकिन जुबान को कंट्रोल करने से फिर भी नहीं हम बाज आते, जुबान नहीं कंट्रोल करते वहां जाके। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मेरी तमन्ना रह गई कि काश पैदल हज करता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान में पैदल हज करने वालों का जिक्र फरमाया। तो उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की थी कि मेरे बेटो पैदल हज करना, इसलिए कि प्यादा पा यानी पैदल हाजी को हर कदम पर हरम की नेकियों का 700 गुना मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि हरम की नेकियां क्या हैं? फरमाया एक नेकी 1,000 नेकियों के बराबर होती है। तो 1,000 को 700 से मल्टीप्लाई कर लें, कितनी नेकियां एक एक कदम पे मिल रही हैं। तो दुबले पतले ऊंट क्यों यहां पे कहा गया, गांव अमीर क्यों आया, कि जब सफर शुरू हो जाता है ना तब तो वो दुबले पतले नहीं होते, लेकिन चूंकि इतनी दूर से आ रहे होते हैं, ना आराम बीच में मिलता है, ना थकावट कितनी है, मुशक्कत कितनी है, तो चल चल के वो पतले हो जाते हैं, इसलिए कहा। तो आप देखें, सुभान अल्लाह, आज कहां कहां से नहीं लोग आ रहे और किस किस सवारी पे नहीं आ रहे। लियशहदु मुनाफिया लहुम, ताकि वो हाजिर हों फायदों को अपने लिए, ताकि वो जाके वहां पे अपने लिए फायदे कमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि लोग जो उस जगह में बरकतें हैं, हज के लिए क्यों आए, ताकि उनको वहां पे फायदे मिले। आप समझते हैं कि वहां पे कोई फायदे हैं? क्या फायदा मिलता है वहां पे, हज पे जाने से क्या मिलेगा आपको, क्यों जाना चाहते हैं? एक तो आप कह सकते हैं ना, मुझे शौक ही है। नहीं, शौक तो इस वजह से आपके पैदा हो गया ना, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, मे भी आपकी रूह ने लब्बई कहा होगा, तो अब अल्लाह ताला ने शौक पैदा कर दिया आपके अंदर ताकि आप चले जाएं वहां पे। ये भी एक तरीका है ना आपको वहां पे भिजवाने का। लेकिन उसके अलावा क्या आप समझते हैं कि कोई फायदे हैं वहां पे? देखिए, जो वहां पे आप जाके फायदे देखते हैं, दीनी फायदे तो हैं ही। मसलन दीनी फायदे क्या हैं, दीन का वहां पे आपको क्या फायदा मिलता है, कि वहाँ पे देखें बख्शिश होती है। कई जगह वहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, तो वहाँ पे जब इंसान जाता है तो अपनी दुआएं कबूल करा लेता है। फिर आप वहाँ पे जाके और इबादत जो आप करते हैं, मसलन यानी वहाँ पे एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर हो जाता है, तो कितना बड़ा अजर है ना। फिर हज का जो एक फरीजा है, फर्ज है आपके पर, वो भी अदा हो जाता है। फिर ये कि हज और उम्रा करने से आप ये भी देखें कि इंसान ऐसे पाक साफ हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। और दुनिया के फायदे तो बहुत सारे, दुनिया के भी फायदे हैं। अब आप, अगर मैं आपको कहूँ तिजारत वहाँ पे होती है और आप तिजारती मंडी बन जाती है, आप कहेंगे हम तो कोई चीज़ लेकर ही नहीं जाते, तिजारत क्या। लेकिन आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हज किया और हज और उम्रे के ऊपर खर्च किया, अल्लाह ताला इसकी इफलास और मोहताजी को दूर कर देता है। इफलास और मोहताजी जो है ना, हज और उम्रे से दूर हो जाती है। यानी दुनिया में भी अगर आप सोचते हैं हज पे जाने से बहुत पैसे लगते हैं, उम्रे पे जाने से बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन देखिए ये भी तो खुशखबरी है ना कि उससे फकर फाका दूर हो जाता है। आज तक लोगों शादियां करके या घर बना के वो पता चलता है कि उसके बाद मोहताज हो गए, इतना खर्चा किया, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि वो कोई कहे कि मैं हज पे गया था उसकी वजह से मैं मोहताज हो गया, सारा मेरा पैसा हज पे खर्च हो गया। हालांकि कितना पैसा खर्च हो जाता है, वहां पे भी जाके खर्चा करते हैं, जाने आने में का भी खर्चा है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हज की वजह से कंगाल हो गया। फिर आप ये देखें, वहां पे जाके इंसान इतना कुछ सीखता है, ये तो मैं आपको मतलब खुद एक एक्सपीरियंस के तौर पे भी बता सकती हूँ, इतना कुछ इंसान सीखता है। क्योंकि जब एक जगह आप रह रहे होते हैं तो आप ना बस वो ही कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, कि बस अपने इलाके को, अपने लोगों को, बस इन्हीं को जानते। वहां पे जाके तरह तरह के लोग, तरह तरह की बोलियां, हर रंगो नस्ल का इंसान वहां पे मौजूद होता है, हर हर इलाके से, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हर इलाके से जाहिर है लोग अपने हुस्न इखलाक की भी खुशबू लेकर आए होते हैं, है ना, कि कई इलाके वाले बड़े नरम मिजाज होते हैं, कई इलाके वाले बड़े सखी हैं, तो सब अपने अपने फायदे उठा के वहां ले आते हैं। फिर वहां पे एक आपको ये भी नजर आती है इज्तमाईयत इस्लाम की, कि इस्लाम इज नॉट जस्ट, ये एक इलाके से में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। कहीं कोई कोई चाइनीज नजर आएगा, कहीं कोई इंडोनेशियन नजर आएगा, कहीं कोई अफ्रीकन नजर आएगा, कहीं कोई गोरा नजर आएगा, कहीं कोई ब्राउन नजर आएगा, हर इलाके के लोग, कहीं कोई रशिया से आए हुए नजर आएंगे, यानी हर रंगो नस्ल के लोग जब आपको नजर आते हैं तो आपको इस दीन का भी, इसका रोब इंसान के दिल में पैदा हो जाता है कि ये दीन कहाँ कहाँ तक दुनिया में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक मेरे मुसलमान बहन भाई हैं मौजूद। फिर आप देखें एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो वहाँ पे जाके आपको मिलती है ना, फ़ायदों की बात हो रही है ना, कुछ ही फ़ायदे हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वरना तो पूरी क्लास में लग जाएंगे। एक बहुत चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि अल्लाह ताला की एक तो कुर्बत बहुत आपको महसूस होती है, एक इंसान की दिल की कैफियत ही बदल जाती है। यानी काबतुल्लाह पे नज़र पड़ते ही जो एक दिल की कैफियत होती है वो मतलब वो नहीं रहती। क्या आपको दुनिया के धंधे और वो सब भूल जाते हैं, और अंबिया से भी वाबस्तगी आपको, उनसे भी एक रिलेशनशिप नसीब होता है कि आप जब देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखो इस जगह पे खड़े होके उन्होंने काबतुल्ला बनाया, और देखो कौन कौन से अंबिया ने यहाँ पे तवाफ़ किए, और फिर सहाबा कराम, और फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हस्तियों को हम याद करते हैं जिन्होंने काबे को तामीर किया, और जो यहाँ पे आए, और जिन्होंने यहाँ पे अपना वक्त गुजारा, और जिन्होंने यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात और कैसी कैसी तंगियाँ, कैसी कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और फिर देखो जब हम उन जगहों का जाके उनकी यानी जगहों की ज़ियारतें करते हैं जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे भी जाके आपको अपना ईमान आपका ताज़ा हो जाता है। तो पता ये उसी वक़्त होगा जब आप शऊरी हज करते हैं ना, जब आप कुछ पता ही नहीं है तो फिर हज भी बेरू ना हो ना आपका। तो वैसे भी जब लोग जगह जगह से इकट्ठे होते हैं तो ये भी होता है कि वहाँ पे बहुत सारी इल्मी बातें भी आप सीखते हैं, इबादत के अलावा बहुत कुछ लोगों से आप सीखते हैं। कुछ लोग इस दौरान हदीस की पूरी पूरी किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ लोग हिफ्ज कर लेते हैं, कुछ लोग पूरा कलामे पाक यानी एक दफ़ा तजवीद से मुकम्मल कर लेते हैं। तो जब आपस में मिलके बैठते हैं तो तब भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, कोई अच्छी बातें सीखते हैं, कोई महारत की बात सीख लेते हैं, कोई दुनियादारी की भी कोई बातें सीख लेते हैं, कोई तिजारत भी इंसान जाके वहाँ पर करता है, उससे भी नफ़ा होता है। तो और एक एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है दरगुजर, कि वहाँ पे लड़ तो सकते नहीं हैं, इसलिए दरगुजर ही दरगुजर है, इग्नोर करना है, जाने देना है, जाने दो। ये बहुत बड़ा फ़ायदा कि इंसान को ख़ुद को कंट्रोल करना आ जाता है ना वहाँ पे जाके, अगर वाकई हम हज करने गए हैं, वरना अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें कि पता नहीं क्या क्या हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं, और अल्लाह हमें दोबारा मौका दे के फिर हम अपनी इस्लाह कर सकें वहाँ पे जाके, फिर सही से हज कर सकें। और देखें ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक दफ़ा हज करके आ जाए, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान की बात आई ना, एक दफ़ा जो हज करने चला जाता है, पहले एक दफ़ा नहीं गया होता, कहते हैं अल्लाह एक दफ़ा बुला ले, एक दफ़ा बुला ले, फिर उसके बाद एक दफ़ा चले जाते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह उस वक्त तो सही तरह पता नहीं हुआ नहीं हुआ, अब ज़रा समझ आइए आप दोबारा बुला लें, आप एक दफ़ा दोबारा जाएँ, फिर करके आ जाते हैं, फिर और ज़्यादा तलब बढ़ती चली जाती है। तो आखरत क्या तो नफ़ा है ही है, अल्लाह की रज़ा भी मिलती है, उसकी मग़फ़रत भी मिलती है, दुआएं भी कबूल होती हैं, एक हज के बदले में इंसान को क्या क्या कुछ मिल जाता है, और यानी अजर कितना, अजर व सवाब कितना वो कमा लेता है, हर हर कदम के बदले में उसको क्या मिल रहा होता है, अल्लाह ताला का मेहमान बन जाता है जब वो हाजी वहाँ पर पहुँचता है, तो वो अल्लाह का मेहमान है, जब वो घर से निकल गया उसने अहराम बांध लिया, अल्लाह का मेहमान बन गया वो, तो जो अल्लाह का मेहमान है, कितने फ़ायदे हैं इसके, यानी दुनिया के भी फ़ायदे हैं आखरत के भी फ़ायदे हैं। लेकिन स्टिल कुछ लोगों के नज़दीक शायद हज इतनी अहम चीज़ नहीं है, अभी तक वो हज से गाफिल है। अब बहुत जगह पे वेकेशन पे जाएंगे लेकिन हज का कभी ख्याल नहीं आता कि हमें हज पे भी जाना है, और जहाँ पे हज की बात आती है वहाँ पे कहते हैं अभी बेटियाँ जवान हैं क्या करें, अभी जब तक नहीं शादी नहीं की ना तो हज पे नहीं जा सकते। पाकिस्तान का टूर कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन हज पे उस वक्त जाना, ये आपको किसने कहा कि जब बेटियों की शादी होगी तभी हज पे जा सकते हैं। अच्छा फिर इसी तरह क्या करेंगे, हमारे पर कर्ज बहुत है हम नहीं हज पे जा सकते, लेकिन बाकी खरीदारी में तो आपका हाथ नहीं रुकता, उस वक्त तो नहीं आप सोचते कि मेरे ऊपर कर्जा है, हज पे जाने के लिए क्यों ऐसा होता है। तो इसमें तो अगर इंसान को पता चल जाए कितने फायदे हैं उसके लिए, तो फिर वो जरूर चाहत करेगा उस घर पे जाने की। तो अगर इंसान समझे इसको, लेकिन देखें जो हज नहीं करता तो फिर एक हदीस में ये भी आता है कि फिर वो यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है फिर उसके, यानी फिर जाओ फिर जहाँ जाते हो, जैसे कोई किसी से नाराज़ होके कह देता है ना जाओ जहाँ जाते हो फिर अल्लाह को नहीं परवाह फिर तुम्हारी, यानी इसको कोई शौक ही नहीं है अल्लाह के घर आने का। और आप ये देखें वाकई जिन लोगों ने लब्बैक कहा होगा, जिनकी रूहों ने, सुभान अल्लाह, आप कई ऐसे लोगों से वहां पे जाके मिलते हैं कि आप सोचते हैं ये हज पे आके से गए, ना उनके पास कोई असबाब थे, ना उनके पास कोई फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे वो, लेकिन अल्लाह ने उनका कैसे सबब बना दिया आप खुद भी हैरान होते हैं। तो अल्लाह ताला असबाब बना देता जिन रूहों ने लब्बैक कहा होगा, तो तो तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उस घर में जाएं, उसकी वहां पे जाके हज करें, उमरा करें। बाज लोग सिर्फ वहां की मुशक्कतों की से आके यानी सुन सुन के बातें इसकी कि वहां पे मुश्किलात बहुत हैं और इंतजार करना पड़ता है और कहीं मैं वहां पे बीमार ना हो जाऊं और मैं वहां पे बाथरूम ऐसे होते हैं तो मैं बाथरूम कैसे यूज करूंगी, इस वजह से मैं नहीं जाती। चलो उमरे पे चली जाऊंगी, जब खाली खाली होगा तो मैं हज पे नहीं जा सकती, रश बहुत होता है, रश से मुझे बड़ी घबराहट हो जाती है। तो देखें, जिसके आप मेहमान बन गए तो वो फिर क्या अपने मेहमान की ऐसी सलूक होने देगा उसके साथ? आप अपने मेहमान के साथ कैसा करते हैं? तो रब को आप ये समझते हैं कि वो ऐसी मेहमान नवाजी करेगा? हर चीज़ ही अल्लाह ताला आसान कर देगा वहां पे। लेकिन अगर शौक ना हो तो फिर ये सारे ही बहाने आ जाते हैं याद। जिसकी तरफ देखने से भी, काबातुल्लाह की तरफ देखने से भी इंसान के जो है ना अजर मिलता है, तो इस सारे अजरों सवाब को छोड़ के वो चाहता है मैं घर में बैठा रहूं, वो नहीं चाहता कि वो गुनाहों से पाक साफ हो जाए। तो हज का शौक रखना चाहिए, असबाब नहीं भी हैं, दुआएं करें अल्लाह से ना मुझे हज पे बुला ले, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देंगे। और अगर किसी के पास कम वसाइल भी हैं तो तब भी फकरो फाके से नहीं डरे, कोई भी आज तक दुनिया में हज करने से कंगाल ना हुआ, तो कुछ नहीं होता, आप नहीं होंगे कंगाल। इसकी नियत कर लें, इरादा कर लें। वयस्कुरु अस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, और जिक्र करें, नाम ले अल्लाह का, कब? फी अय्यामिन मालूमात, मालूम दिनों में। ये कौन से मालूम दिन है? ये मालूम दिन कहा जाता है कि या तो जिल हज के पहले 10 दिन है, फर्स्ट 10 डेज है, अगर इतना ही सिर्फ पढ़ा जाए, और आगे को कहा जाए अलामा रज़ाकहुम मिन बहीमतिल अनाम, और उसके ऊपर अल्लाह का जिक्र करो जो कि तुमने जानवर जब जिबा करते हो। अगर इस तरह से लिया जाए तो फिर 10 दिन पहले भी हो सकते हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अय्याम तशरीक़ हैं, यानी 10 ज़िलहज और उसके बाद जो 11, 12, 13 हैं, ये डेट्स जो हैं ये चूंकि कुर्बानी की डेट्स हैं, इसलिए इनमें अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करें। किस पे? बहीमतिल अनआम पे, यानी मवेशी किस्म के जानवर जो हैं, ऊँट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये जो कैटल किस्म के हैं। अनआम जो है ना, अनआम ऊँट, उसके बगैर जो है ना, यानी अनआम का लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता, ऊँट गाय भेड़ बकरी को नहीं सिर्फ कह सकते जब तक कि हम ऊँट नहीं बीच में वो शामिल करें। वो बेसिकली ऊँट के लिए आता है, और उसके अलावा फिर कैटल और भी सारी जो भी है। तो उसके ऊपर अल्लाह का नाम लो इन दिनों में और कुर्बानी करो, अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो, तो फिर आप अय्याम तशरीक को 10, 11, 12, 13 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिनों में ख़ास तौर पे अल्लाह का जिक्र करने की, तकबीरात पढ़ने का, और अल्लाह के जिक्र के साथ ही जानवरों की कुर्बानी करने का जिक्र आया। तो इससे क्या पता चला? सिर्फ हज के ऊपर ही नहीं, जानवरों की कुर्बानी के बाद अल्लाह का नाम लेना, हर वक्त जब भी कुर्बानी करनी है तब अल्लाह का नाम लेकर ही करनी है, कि अल्लाह का नाम लिए बगैर जो कुर्बानी की जाती है वो, यानी जो ज़िबा किया जाता है वो हराम है। फकुलू मिनहा, तो खाओ इसमें से, किस में से? उस गोश्त में से, ये जो कुर्बानी तुम करो, तुम खुद भी खा सकते हो। यानी आप देखें, काफिर जो थे ना वो भी कुर्बानियां करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो उसमें से खुद नहीं खाते थे, कहते थे हमने खुद नहीं खाना। तो अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त फरमा दी कि तुम खुद भी खाओ, वह अतइमुल बाइसा, और खिलाओ भूखे को, बस से भूखे को खिलाओ, और फकीर को भी, मोहताज को भी। तो एक तो सबसे पहली चीज क्या है कि ज़िबा करते वक्त किसी और का नाम नहीं लेना, बल्कि जब ज़िबा करो किबला की तरफ उसका मुंह करो जानवर का, सॉरी, किबले की तरफ मुंह करके कहो बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा मिनका व इलैका भी आता है कई जगह पे, कि ए अल्लाह इस कुर्बानी की इब्तिदा और इंतहा तेरी तरफ है। बाज़ ने कहा कि आप उसके बाद ये कहें ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। तो ये कह के
इंसान जो है ना कुर्बानी करे, अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कुर्बानी का गोश्त आप जब डिवाइड करने लगे तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आप खुद भी खा लें और दूसरों को भी दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 3 दिन तक कुर्बानी का गोश्त रखो, फिर जो बच जाए इसको सदका करो। फिर उसके बाद, जब ये उस वक्त था जो जब हालात में भी इतने मुसलमानों के अच्छे नहीं थे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें मना किया था 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त रखने से, फिर आपने फरमाया कि तुम कुर्बानी का गोश्त अब खाओ, इसका ज़खीरा भी करो और सदका भी करो। अब उसके बाद फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं। फिर तो इसका मतलब है कि जो अपने फ्रीज़र में लोग रख लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, सारा भी खुद खा सकते हैं, भूखों को भी सारा दे सकते हैं, मोहताजों को भी सारा दे सकते हैं। जैसे आप अपनी कुर्बानियाँ आजकल भेजते हैं, वहाँ पे कई जगहों पे आप भेज देते हैं कि वहाँ पे कुर्बानी कर दी जाए हमारी तरफ से, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं इसको। बस यही है कि यानी सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जब यहाँ पे ईद का दिन हुआ, आप नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद ही वहाँ पे आपकी तरफ से कुर्बानी की जाए, ठीक है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ को ताकीद के साथ जैसे फरमाया है ना कि नमाज़ ईद अदा करने के बाद कुर्बानी करो, और जिन्होंने इससे पहले कुर्बानी कर दी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी तरफ से फिर कुर्बानी नहीं हुई। तो ये हदीस बुखारी की है कि क्या हुआ था, हज़रत जुंदब बिन सुफियान फरमाते हैं कि मैं ईद उल अज़हा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने नमाज़ पढ़ी और नमाज से फारिग होने के बाद आपने देखा कि नमाज ईद से पहले कुछ कुर्बानियाँ कर ली गई हैं। जैसे को कुछ लोग होते हैं, अभी लोग यानी नमाज ईद के लिए गए होते हैं तो वो पीछे से कुर्बानियाँ शुरू कर देते हैं कि जल्दी जल्दी फारिग हो जाए। तो आपने फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की है वो इसकी जगह दूसरी कुर्बानी करे, और जिसने पहले ज़िबा नहीं किया वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करे। यानी दो ये शरायत हैं कि अल्लाह का नाम लेके कुर्बानी की जाए, और दूसरी बात यह है कि नमाज ईद के बाद कुर्बानी की जाए। और बाज़ लोग इस तरह से करते हैं, फजर पढ़ते ही वहाँ पे फार्म पे पहुँच जाते हैं, नमाज ईद अदा ही नहीं की, वहीं पे जाके बस कुर्बानियाँ शुरू कर दी धड़ाधड़। तो ये भी नहीं सही है, जब तक नमाज ईद अदा नहीं हो जाएगी आप नहीं कुर्बानी कर सकते। बाज़ जगह पे ये होता है कि आप स्टोर्स वगैरह पे दे देते हैं पैसे। अब सुबहान अल्लाह, जब मैंने सुना मैं तो हैरान भी हुई, और आप इस चीज़ का ध्यान भी रखिएगा इस दफ़ा भी, कि वो स्टोर पे आप देते हैं, आपने अभी ईद की नमाज़ अदा ही नहीं की होती, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है कब वो कुर्बानी भी करके ले आते हैं। वो कहते हैं 9-10 बजे आप जो है ना गोश्त आपका बन भी जाएगा, आप आके पिक भी कर लेना। आपने जब 8-8:30 बजे नमाज ईद अदा की है तो आपका गोश्त कैसे 1-1.5 घंटे में फार्म से बन के भी, और उसके पीसेस भी हो के सब हो के भी, सब कुछ तैयार हो के स्टोर तक भी पहुंच गया? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम जब मेरी तरफ से अगर कुर्बानी है तो जब तक मैं ईद की नमाज ना अदा कर लूँ उस वक्त तक मेरी तरफ से कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं अपने हाथ से कर रही हूँ या फिर मेरे लिए कोई और कर रहा है, लेकिन कुर्बानी तब तक होगी नहीं जब तक कि आप ईद की नमाज नहीं अदा कर लें। और अब आप ये पूछेंगे, कुर्बानी क्या सारे घर की तरफ से एक कर लें या अलग अलग करें? तो देखें, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। देखें, ये वो चीज़ है, आगे मैं इंशाल्लाह इसकी आपको फजीलत भी बताती हूँ, मगर ये वो चीज़ है कि देखें, अगर ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा पाओगे, ये तो अजर की चीज़ है ना। एक एक बाल के बदले जहां पे, एक एक बाल के, एक जानवर के नहीं, एक बाल के बदले भी नेकी मिल रही है। जितने उसके ऊपर बाल हैं, आप सोचें कि कितने लाखों बाल होंगे उसके ऊपर, करोड़ों बाल होंगे, कितनी आपको नेकियां मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कर लें, पूरे घर की तरफ से भी एक हो सकती है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है ना। तो बात यह है कि इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब गोश्त तकसीम करने लगते हैं तो तब भी हमें एक प्रॉब्लम होती है कि किसको दें और किसको नहीं दें, चाहे खुद खाएं, भूखे को भी खिलाएं, मोहताज को भी। आगे भी इंशाल्लाह आएगा कि किस तरह से आप हिस्से कर सकते हैं, लेकिन अक्सर फुकाहा यही कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, एक हिस्सा खुद खा लिया जाए, एक अहलो अयाल को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को दे दिया जाए, और एक हिस्सा फकीरों मिस्कीनों को। इसकी आगे भी दलील आ रही है, फिर आप उसमें भी देख सकते हैं। मगर पूरा भी मिस्कीनों को दे दें कोई हर्ज नहीं है, पूरा रिश्तेदारों को दे दें, कोई हर्ज नहीं है। पूरा अगर आपके घर में खुद इतने अफराद हैं और आप समझते हैं कि आप ज़रूरतमंद हैं, आप खुद खाना चाहते हैं, पूरा खुद भी रख सकते हैं। सुम्मल यकदू तफसहुम, फिर चाहिए कि दूर करें अपना मैल कुचैल। मैल कुचैल दूर करने से मुराद क्या है? यानी 10th ज़िलहज को। अब जो लोग हज पे नहीं गए उनके लिए मे भी ये बातें थोड़ी सी मुश्किल उनको लगें, और जो जा चुके हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि 10 ज़िलहज को जब आप उसके बाद यानी आपने कुर्बानी कर ली, आपने ये जमरात कर लिए, तो उसके बाद जब आप उसके बाद अपना एहराम खोलते हैं तो अब आप एहराम की हालत में, जाहिर है ना, तो आप खुशबू लगा सकते थे, ना अपने नाखून तराश सकते थे, ना अपना सर के बाल कटवा सकते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप इस चीज़ से, जब आपने कुर्बानी भी कर ली, आपने सब काम अपने कर लिए, अब आप एहराम से बाहर आए हैं, तो अब नहाएं धोएं, अपने उलझे भालों को सुलझाएं और खुशबू भी लगाएं, अच्छे कपड़े, सिले हुए कपड़े पहने, मर्द तो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो सिले हुए कपड़े पहनेंगे, तो अपना यानी मैल कुचैल दूर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी वही है कि उसके बाल उलझे हुए हों और उसके बदन से बू आती हो। यानी वो तो बेचारा इतना यानी मुशक्कत में जो होता है, वो सारा दिन चल चल के कभी किसी जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर आप मुजदलिफा से जब आते हैं तो रात को वहाँ पे आपने यानी क़याम किया होता है, वहाँ पे आप सोए होते हैं, तो उसका भी गर्दो गुबार ऊपर होता है, तो वो भी सड़कों के ऊपर खुले मैदान के अंदर आप यानी रात गुजारते हैं, तो उससे इंसान के ऊपर ज़ाहिर है गर्दो गुबार होगा। फिर 10 तारीख का यहाँ पे जिक्र है कि जब आप उसके बाद अपने सारे अरकान अदा कर लिए हैं, कुर्बानी कर लिया, तो अब हजामत भी बनवाएं, नाखून भी कटवाएं, नहाएं धोएं, मैल कुचैल दूर करें, एहराम खोल के आम लिबास में अब आप आ जाएं, तो एहराम की सारी पाबंदियां उस वक्त फिर आपसे उठ जाती हैं, सिवाय एक पाबंदी के कि बीवी के साथ मिल नहीं सकता शौहर। अब उसके लिए क्या है कि जब तक तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर लेते, जिसको तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं, तो जब तवाफ़ इफ़ादा कर लेते हैं जो फ़र्ज़ है, उसके बगैर हज नहीं होता, तो फिर आप सारी पाबंदियाँ फिर उठ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आगे फिर आप तवाफ़ की भी बात देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ये कहा गया कि दूर कर लें अपना मैल कुचैल। मैल कुचैल में अब क्या आ गया है कि बड़े हुए जो बाल हैं, आपके बाल भी मुड़वाएंगे, फिर नाखून भी, जो जायद नाखून है, इतने दिन से नाखून अगर नहीं काटे, अब जो है ना नाखून भी काटेंगे। और ये देखें कि ये नाखून काटना या मूछें तराशना या बगल के बाल नोचना और ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना, उनको उस तरह से मूंढना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनका हदीस में ज़िक्र है कि ये फितरत में रखी गई हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी ताकीद की गई थी। यानी ये अभी से नहीं, शुरू दिन से इंसानों के लिए सफाई सुथराई के लिए एक उनको बता दिया गया कि देखो ये चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए, ना नाखून, ना ज़ेरे नाफ बाल, ना बगलों के बाल और ना ही मूछें आदमियों के लिए। अब आज के वक्त में हम इस चीज़ को फैशन समझते हैं कि नाखून बढ़ाएं, और इस चीज़ के अंदर हम शायद हम ज़्यादा समझते हैं कि हम इससे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, हालांकि ये नजासत है, ये निजासत में ही शुमार होते हैं ना। इसीलिए मैल कुचैल को अपने साफ करने के अंदर नाखून का भी वो है कि आप नाखून भी अपने काटें। तो आज हमने बिल्कुल अपने सारी यानी बिल्कुल उलट कर लिए हैं, अपनी फितरत से हट के काम कर रहे हैं, जबकि आज देखिए मेडिकल साइंस भी ये कहती है, जब आप कुछ भी करने लगे तो कहते हैं हाथों को धो और फिर खाओ, हाथों को धो और फिर ये काम करो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स आपके हाथों के थ्रू आपके अंदर जाते हैं, और हाथों में सबसे ज़्यादा नाखून है ऐसी जगह जिसमें जर्म्स जाके स्टोर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपना बसेरा कर लेते हैं। क्योंकि जब नाखून लंबे होते हैं तो उनके अंदर तक आप सफाई नहीं कर सकते, आपका हाथ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे, वहाँ से जो भी जरासीम, आप चाहे आप अपनी निजासत साफ़ कर रहे हैं या अपने बच्चे को धुला रहे हैं या आप कोई भी और काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि हाथों से ही करना है ना आपने काम, तो वो जो जरासीम है वो नाखूनों के अंदर जाके यानी वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। फिर आप उसके बाद खाना खाते हैं, आटा गूंदते हैं और कोई भी काम करते हैं, आप सोचें कि निजासत के साथ आप कर रहे हैं, वो वहाँ पे स्टोर हुए में। लेकिन ऊपर से हम उनके ऊपर पॉलिश लगा लेते हैं ताकि बिल्कुल ही ना नजर आए, तो इसकी सफाई कौन कर सकता है? फिर अंदर जाके इनको वहां तक लाजतें कौन निकाल सकता है? और 40 दिन से ऊपर तो आप ना अपने बाल बढ़ा सकते, ना अपने नाखून इस तरह कर सकते, उसके अंदर अंदर आपको इनको काटना होता है। हदीसे कुदसी में फरमाया, मेरे घर के जायरीन को देखो, हर तरफ से प्रागंदा बाल यानी बिखरे बाल और गुबार आलूद लिबास में मलबूस चले आ रहे हैं। तो इंसान जब एहराम की हालत के अंदर होता है तो उस वक्त तो गुबार आलूद होता है, लेकिन उसके बाद एहराम से निकल आता है वो तो साफ पाक हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दूर कर लें अपना मैल कुचैल। ये कैसे दूर होगा? बाल मुड़वाने से और नाखून तराशने से और फिर सिले हुए कपड़े पहनने से, गुसल करके खुशबू लगाने से। तो ये एहराम की पाबंदियां फिर उससे उठ गई। इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखें जो के हदीस में और जो सुन्नते इब्राहिमी है उस पे आ जाए। और सुन्नते इब्राहिमी यही है कि इन्हीं 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जो, 2 चीज़ें हैं जो बाहर से नज़र आती हैं, 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिबास के अंदर होती हैं, किसी को नहीं नज़र आती, ना किसी को पता है कि हम अंदर से अपनी क्या सफाई सुथराई रख रहे हैं। ये हम अपनी तहारत के लिए, देखिए ताहिर बैती, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे घर को पाक कर दो, किसके लिए? इबादत गुजारों के लिए। अच्छा, अल्लाह का घर पाक साफ रखने की क्यों है? कि वहाँ पे इबादत की जाएगी, तो वो जो बंदा इबादत करने वाला हो वो गंदा और वो हो तो फिर कैसी ये नापाक हो, तो ये कैसी बात होगी? फिर जगह पाक साफ रखनी है तो उस बंदे को जो इबादत कर रहा है उसको तो उससे भी ज़्यादा पाक साफ होना चाहिए। इबादत के लिए हमें अपने आप को भी पाक साफ करना है, अपनी इर्द गिर्द की जगह तो बाद में आती है, हमारा जिस्म ही गंदा है और उसके अंदर निजासतें लगी हुई हैं और साथ ही आप उनको कैरी कर रहे हैं, जरासीम को भी निजासत को भी। और कितना मर्जी आप साफ करने की कोशिश करें, इंसान नहीं कर सकता, इन जो नाखूनों के अंदर गंदगी फंस चुकी होती है। इसी तरह जो बगल के बाल हैं या जेरे नाफ बाल हैं उनको भी मूंडना, सब के लिए, मर्दों और औरतों के लिए ये ज़रूरी है।